ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 8 श्लोक संख्या 11। मेरे पीछे बोले, आभिषेचनिका भूमि आहरण सकल औषधी गावा पंच पवित्राणी वसंतो मधुमाधव। शब्दार्थ बोलिए, आभिषेचनिका अर्चा विग्रह की स्थापना के लिए आवश्यक साज सामग्री भूमि ही भूमि ने आहरत एकत्र की, सकल सभी तरह की औषधि औषधियां तथा जड़ी बूटियां गावः गायें पंच गाय से प्राप्त होने वाले पांच प्रकार के पदार्थ यथा दूध दही घी गोबर तथा गोमूत्र पवित्राणि अकलुषित वसंतः साक्षात वसंत ऋतु मधुमाधव वसंत ऋतु अथवा चैत और वैशाख मास में उत्पन्न होने वाले फल तथा फूल। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, भूमि ने साकार होकर अर्चा विग्रह की स्थापना के लिए जड़ी बूटियां एकत्र की, गायों ने पांच प्रकार के उत्पाद दिए, दूध दही घी गोमूत्र तथा गोबर, और साक्षात बसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख यानी अप्रैल तथा मई मास में उत्पन्न होने वाली हर वस्तु को एकत्र किया। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है आभिषेचनिका भूमिर आहरत। आहरत का मतलब है लेके आई, तो पृथ्वी देवी लेके आई, है ना। इसका क्या मतलब है पृथ्वी देवी लेके आई? पृथ्वी में तो मिलता है, कोई व्यक्ति लेके आएगा पृथ्वी से लेके आएगा, लेकिन पृथ्वी देवी आहरत का मतलब लाई, पृथ्वी देवी लाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पृथ्वी देवी जो है साक्षात पृथ्वी देवी स्त्री के रूप में लेके आए। कभी कभी पृथ्वी देवी गौ का रूप धारण करती हैं, लेकिन यहाँ पर गौ का रूप नहीं धारण किया है, बल्कि देवी हैं, एक स्त्री हैं पृथ्वी देवी। जैसे कि भगवान कृष्ण जब नरकासुर का वध करते हैं तो पृथ्वी देवी स्त्री के रूप में उसका जो पुत्र है भगदत्त उसका हाथ पकड़ करके लाई और कृष्ण से अभयदान मांगा कि इसको आप अभय दीजिए, ये बहुत भयभीत हो रहा है। तो यहाँ पृथ्वी देवी एक स्त्री के रूप में है, गाय के रूप में नहीं है, स्त्री के रूप में पृथ्वी देवी ये सब चीजें लेके आई, मतलब लाई, है ना। तो उनको लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ढोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, है ना। उनके पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि पृथ्वी में जहाँ कहीं भी हो तो वो जो है ऐसे हाथ करेंगे और आ जाएगी, है? और वहाँ पर अर्पित करेंगे। आभिषेचनिका का मतलब है अभिषेक की सामग्रियां, अभिषेक की सामग्रियां जो भी पृथ्वी में पृथ्वी से प्राप्त होती हैं वो उन्होंने ला करके दी। तो पृथ्वी देवी स्वयं साक्षात देवी के रूप में प्रकट हुई, है ना। और अभिषेक किसका होना है कौन बताएगा? लक्ष्मी जी का अभिषेक होना, लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी का अभिषेक होना है तो लक्ष्मी जी भी साक्षात देवी के रूप में है। वैसे तो हम लक्ष्मी बोलते हैं धन संपत्ति को, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी जी की वो शक्ति नहीं है बल्कि स्वयं देवी हैं, लक्ष्मी देवी हैं। तो उनके अभिषेक का जो सामान है पृथ्वी में जहाँ जहाँ जो भी चीज प्राप्त होती हैं तो वो जो है अपना हाथ ऐसे करते हैं और ला करके अर्पित करते हैं। और किन को देते हैं? ऋषि मुनियों को। अब ऋषि मुनि अभिषेक करेंगे, जो ब्राह्मण लोग अभिषेक करेंगे तो उन्होंने जो है ला करके एकत्र कर दी। मैं आभिषेचनिका आभिषेचनिका भूमिर आहरत सकल औषधि, जितनी प्रकार की औषधियां हैं तो अभिषेक में बहुत सी चीजें हैं काम में आती हैं जो पृथ्वी से उत्पन्न होती हैं, तो सब औषधियां सुगंधित भी जो है बहुत सी औषधियां होती हैं तो वो सब जो है उन्होंने ला करके दी। फिर गावा पंच पवित्राणी, गौओं ने पंच पवित्र दिए, पंच पवित्र, पंच गव्य भी बोलते हैं, पंच पवित्र दिए गौओं ने। तो गौओं के पंच पवित्र क्या है? दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, है ना। तो गौओं ने जो है ये सब दिया तो इससे भी समझ में आता है कि गौओं की भी एक देवी है, गौओं की भी एक देवी है और उन्होंने जो है दिया तो गौओं की देवी कामधेनु है। कामधेनु तो समुद्र मंथन से उत्पन्न हो चुकी हैं या उत्पन्न होंगी, जो भी हो इसमें आएगा, है ना। तो गौओं की भी एक जो है देवी है, प्रतिनिधि स्वरूप है देवी, तो उन्होंने दे दिया, है ना। तो गौ कैसे देती हैं? कामधेनु गाय जैसे देती है, तो कामधेनु गाय कैसे देती है? अपने स्तन से ही सब कुछ निकाल देती है और केवल पंच गव्य ही नहीं देती बल्कि हर चीज भी देती, कोई भी चीज को दे सकती है। कामधेनु गाय हर चीज दे सकती है, सैया भी और सब प्रकार के व्यंजन, रसगुल्ला और क्या क्या है, केक, सब कुछ दे सकती है ना। तो वो जो है अपने स्तन से सब कुछ निकाल सकती हैं। तो गौ जो देवी है उन्होंने भी सब कुछ दे दिया, गोमूत्र, गोबर, सब कुछ। तो उनको जो है गोमूत्र जो है वैसे निकालने की जरूरत नहीं है कि गोमूत्र करेंगी, बल्कि गोमूत्र जो है उन्होंने अपने स्तन से ही दिया, स्तन से गोबर भी दिया, स्तन से सब कुछ दिया, स्तन से ही सब कुछ दे सकते हैं। तो गौओं की देवियों ने जो है पंच पवित्र दिए, तो कितने पवित्र हैं? गोमूत्र भी, गोबर भी, कितना पवित्र है। गाय के शरीर से वैसे मल के रूप में निकलता है गोबर, और गोमूत्र भी जो है वैसे निकलता है कि जो अनावश्यक अशुद्ध चीज है शरीर से निकल रहा है, लेकिन वो कितना शुद्ध है। गाय के शरीर से जो निकल रहा है जैसे अशुद्ध हो, मानो अशुद्ध चीजें निकल रही हो, गोमूत्र या गोबर, तो वो भी कितना पवित्र है। तो उन्होंने जो है प्रदान किया, क्यों? अभिषेक के लिए ये आवश्यक है। गावा पंच पवित्राणी वसंतो मधुमाधव, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु भी जो है एक मूर्तिमान पुरुष के रूप में है यहाँ पर, और उसने भी जो है मधु और माधव, मधु माने चैत्र महीना और माधव का मतलब वैशाख महीना, तो चैत्र महीने और वैशाख महीने में जो जो भी चीजें फूल और फल उत्पन्न होते हैं वो उसने दिए। तो वो इस समय हो सकता ना हो चैत्र का महीना, ना हो वैशाख का महीना, ना हो, बसंत ऋतु ने दिए। तो बसंत ऋतु के पास जो है वो सब शक्तियां हैं, वो हाथ ऐसे करें और वो चीजें आ जाएंगे और दे दी। तो बसंत ऋतु भी जो है यहाँ ऋतु के रूप में मतलब ऑब्जेक्ट रूप में नहीं है बल्कि व्यक्ति रूप में है, मूर्ति, मूर्त रूप में बसंत ऋतु ने ये दिए। तो यहाँ पर तीन प्रकार के व्यक्तियों की बात आई है, एक तो पृथ्वी देवी, वो भी मूर्तिमती पृथ्वी देवी हैं, और दूसरी गौएं हैं, तो गौओं ने भी जो है मूर्ति का रूप धारण किया है, और बसंत ऋतु भी एक पुरुष के रूप में धारण, पुरुष का रूप धारण किया है। तो पृथ्वी देवी है और गौएं भी देवियां हैं, और बसंत जो है पुरुष देवता। तो इन्होंने जो है लक्ष्मी जी के अभिषेक के लिए अपनी अपनी ओर से सामग्रियां प्रदान की। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की वैदिक निर्देशों के अनुसार संपन्न होने वाले समस्त अनुष्ठानों में पंचगव्य अर्थात गाय से प्राप्त पांच पदार्थों दूध दही घी गोबर तथा गोमूत्र की आवश्यकता होती है। तो यहां जो प्रभुपाद बताते हैं कि जो पवित्र अनुष्ठान होते हैं इनमें तीन पांच चीजों की आवश्यकता होती है, और जो ऋषि मुनि होते हैं वो अपने आश्रम में गाय को रखते हैं केवल इसीलिए रखते हैं इन चीजों का जो है प्रयोग करने के लिए। सामान्य व्यक्ति दूध पीता है और दूध के कई प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, ये ऋषि मुनि जो है जंगल में अपने आश्रम में गाय को जो रखते हैं वो इन चीजों को प्राप्त करने के लिए रखते हैं। वो हो सकता है दूध वैसे ना पिए और दही ना खाएं और दूध के बने कई प्रकार के आइटम हैं वो ना खाएं, तो उनका जीवन बड़ा सरल होता है और बड़ा विरक्त जीवन बिताते हैं। तो गाय का दूध वो नहीं पीते और दही और ये सब चीज़ों का जो है वो सेवन नहीं करते अपने शरीर में, लेकिन यज्ञों में आवश्यकता पड़ती। गाय वास्तव में जो है वो यज्ञों के लिए होती है, गाय और ब्राह्मण ये जो है समाज के लिए आवश्यक बताए गए हैं। तो गाय की जो आवश्यकता है वो यज्ञों में जो आवश्यक सामग्रियां हैं उनको देने के लिए गाय होती है, और जो ब्राह्मण है वो यज्ञ करते हैं। गो ब्राह्मण है कायचा। अब कलयुग में जो है वो यज्ञ नहीं होते हैं, कलयुग में वो यज्ञ नहीं होते हैं, तो इसलिए गाय जो है काटी जाती है। तो यहां प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, गाय से प्राप्त पांच पदार्थों दूध दही घी गोबर तथा गोमूत्र की आवश्यकता होती है। गोमूत्र तथा गोबर कल्मषहीन होते हैं, और चूंकि ये दोनों भी महत्वपूर्ण है अतः मानव सभ्यता के लिए इस पशु की उपयोगिता का अनुमान लगाया जा सकता है। तो यज्ञों में इनकी आवश्यकता है, मतलब गोमूत्र गोबर के बिना भी यज्ञ नहीं हो सकता, आवश्यक है। लेकिन अब वो यज्ञ नहीं हो रहे हैं, वो यज्ञ नहीं हो रहे हैं, तो भी गोमूत्र से कई प्रकार की दवाइयां दवाइयों में उपयोग होता है, और गोबर भी जो है दवाई के काम आता है, और गोबर से जो है स्थान भी पवित्र होता है, गोबर के लेप से स्थान पवित्र होता है, पूजा का स्थान भी पवित्र होता है। तो गाय कितना, मतलब गाय का गोबर कितना पवित्र है कि भगवान की पूजा का स्थान पवित्र होता है, गाय का गोबर इतना पवित्र है, हालांकि मल है, और गोमूत्र भी जो है बहुत पवित्र है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि मानव सभ्यता के लिए इस पशु की उपयोगिता का अनुमान लगाया जा सकता है, गाय कितनी उपयोगी है मानव सभ्यता के लिए। और प्रभुपाद कहते हैं कि दूध की आवश्यकता हमारे मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु बनाने के लिए है, गाय का जो दूध है हमारे मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु बनाती, हम गाय का दूध पीते हैं, और वही जो है घी के रूप में दूध को जो है घी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो भी सूक्ष्म तंतु बनाता है। अगर आप दूध नहीं पीते हैं, दूध नुकसान करता है, दूध से जो है अगर कुछ आपको बाधा होती है तो गाय का जो घी है तो उसमें वो सब गुण हैं आपके दिमाग के जो तंतु हैं वो बनाते हैं, जिनसे सूक्ष्म विषय को आप समझ सकते हैं। आज की शिक्षा में बहुत से लोग हैं जो गाय का घी या गाय का दूध नहीं पीते हैं, तो उनका दिमाग दूसरी दिशा में खूब काम करता है और वो साइंस में और शिक्षा में काफी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जहां भगवद गीता की शिक्षा दी जाती है तो वो बिल्कुल उनके दिमाग में घुसती नहीं हो पाते, आध्यात्मिक ज्ञान उनके दिमाग में घुसता नहीं है। तो बहुत से लोग हैं उनको मिलते ही नहीं है, गाय का घी मिलते नहीं, ना कभी कोई सोचता है कि गाय के घी की गाय के दूध की आवश्यकता है। और बचपन में हम लोग जो है गाय का घी और गाय का दूध, हमारे घर में भी गाय थी तो खूब लेते रहे, तो इस तरह से जो है अब अगर नहीं भी ले रहे हैं तो भी काम चल रहा है, पहले का लिया था। तो आध्यात्मिक ज्ञान, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, है ना, ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों को ये दिमाग में घुसती नहीं है बात, जबकि वो बहुत बड़े वैज्ञानिक है, दिमाग बहुत तेज है, लेकिन जहाँ शरीर और आत्मा में अंतर है इस विषय को जो है वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि आपने विज्ञान में कितनी शाखाएं बनाई, कितने विभाग बनाए विज्ञान के, किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के प्रभुपाद चुनौती देते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितने विभाग हैं। तो एक विभाग ये भी होना चाहिए कि मृत शरीर और जीवित शरीर में अंतर का अध्ययन करो। क्यों? इतना अध्ययन कर रहे हैं आप लोग, कितनी कितनी चीजों का अध्ययन कर रहे हैं और जो है परमाणु तक का जो है आप विभाजन कर रहे हैं। परमाणु के अंदर भी, नाभिक के अंदर भी जो है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनका अध्ययन कर रहे हैं। कितनी संख्या है नाभिक के अंदर और चारों तरफ जो नाभिक के चारों तरफ ऑर्बिट है उनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उनमें कितनी गति है, इलेक्ट्रॉन का जो मात्रा है उसका, इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना है, विद्युत आवेश कितना है, उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। सब कुछ अध्ययन कर रहे हैं। कितना अध्ययन कर रहे हैं? और जो सामान्य घटना है मृत शरीर और जीवित शरीर में के बीच में अंतर, इसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कठिन है आप लोगों के, तो दिमाग में क्या भरा है? गोबर भरा है। तो बात है गोबर भरा है, तो गोबर से काम नहीं चलेगा। गोबर गोबर भी पवित्र है लेकिन गाय के गोबर से भी काम नहीं चलेगा। दिमाग में आपको गाय का दूध चाहिए, घी चाहिए। गोबर का भी उपयोग है, गोबर का भी उपयोग है, बहुत पवित्र है, लेकिन दिमाग के लिए आपको गाय के दूध की या घी की आवश्यकता है। दूध, दही या घी, इन चीजों की आवश्यकता है। तो दिमाग में गोबर भी भरा है तो भी काम नहीं चलेगा। बाहर जो है गोबर से शुद्ध किया जाता है, स्थान पवित्र किया जाता है, है ना? तो प्रभुपाद कहते हैं गाय का गोबर भरा है या मल भरा हुआ है आपके दिमाग में, क्योंकि सवेरे सवेरे मल त्याग कर दिया, करने जाते नहीं सवेरे सवेरे, तो मल का जो प्रभाव है दिमाग में भरा रहता है कि सवेरे उठते ही नहीं है, उठते हैं 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, तो वो जो मल जो पचा हुआ है शरीर में उसका प्रभाव जो है दिमाग में जाता है। सवेरे सवेरे मल त्याग करते नहीं, पेट साफ करते नहीं, तो विधि यही है कि सवेरे सवेरे उठो और पेट साफ करो, है ना, मल त्याग करो, है तो मल भरा है दिमाग में। इसलिए ये बात जो है, जो जीवित शरीर मृत शरीर के बीच में अंतर है, इसका कोई विभाग ही नहीं है। और प्रभुपाद ने कितना, मतलब ये स्वाभाविक बात बोली है, कितनी एक है ना सोचने वाली बात है। कितना अध्ययन कर रहे हैं आप लोग, कितना अध्ययन कर रहे हैं, कितने तरह के कपड़े बन रहे हैं, उनके रंग बन रहे हैं, फूलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, कितना कितना अध्ययन कर रहे हैं आप लोग। लेकिन मृत शरीर और जीवित शरीर के बीच में क्या अंतर है, इसका जो है अभी तक कोई अध्ययन नहीं। केवल इतने ही बताते हैं कोई केमिकल मिसिंग है। सब केमिकल तो आप जानते हैं, आपने सब केमिकल का भी विश्लेषण कर लिया, कौन सा केमिकल मिसिंग है, मतलब नहीं है, और वो आप डाल करके जीवित करो शरीर को, तो वो भी नहीं, वो भी नहीं करते। कुछ केमिकल निकल गया है शरीर से तो शरीर मृत हो गया है। तो सब कौन सा केमिकल है भाई, डाल दो शरीर में, जिंदा करो, है ना। तो विज्ञान में कितना बड़ा ये दोष है, कितनी बड़ी कमी है, प्रभुपाद जो है चुनौती देते हो, वहीं जाकर के चुनौती देते हो। किसी के पास जवाब नहीं, किसी के पास जवाब नहीं, कि दिमाग में मल भरा हुआ है, किसी के पास जवाब नहीं, है ना। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं, अति मानव सभ्यता के लिए इस पशु की उपयोगिता का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने कई बार यह बताया कि 7 माताएं हैं, 7 माताएं, उनमें से एक माता गौ भी है, है ना। 7 माताओं का श्लोक किसी को याद है? मुझे याद है लेकिन याद करना पड़ेगा। धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सत्यता मात्र का स्मृत, ये दूसरी पंक्ति श्लोक की है। ब्राह्मणी राजपत्नी का आदो माता है, आदो माता गुरु पत्नी, ब्राह्मणी राजपत्नी का, हाँ, तो एक तो हमारी जननी माता है, जन्म देने वाली, आदो माता गुरु पत्नी, गुरु माता भी बोलते हैं, गुरु पत्नी को गुरु माता बोलते हैं, आदो माता गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पत्नी, और राजपत्नी का, और राजा की पत्नी, कितनी हो गई, चार हो गई, धेनुर धात्री तथा पृथ्वी, फिर गौ धेनु धात्री नर्स तथा पृथ्वी सत्यता मात्र का स्मृता, सात प्रकार की माताएं। तो प्रभुपाद ने कई बार ये भी सुझाव दिया कि गाय की हत्या करने के बजाय दूसरे पशुओं की हत्या करो, अगर बहुत इच्छा है मांस खाने की गाय की हत्या क्यों करते हैं? या फिर गाय जब शरीर छोड़ दे तो फिर उसका जो है जो कुछ भी करना है, कुछ खाना है या कुछ उपयोग करना है तो करो, लेकिन जीवित गाय है की हत्या क्यों करते हैं, माता की हत्या करते हैं, है ना। और श्री चैतन्य ने चांद काजी से भी सीधे उसके मुंह पर बोला कि तुम्हारे धर्म का जो है क्या हाल है, तुम्हारे धर्म के जो बनाने वाले जो थे उनके पास इतना विचार नहीं था कि गाय की हत्या का जो है स्वीकृति दी, गौ की हत्या की स्वीकृति दी आपके धर्म में, जिसका आप दूध पीते हैं, जो माँ है तो उसकी हत्या आप लोग करते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य ने चांद काजी को सीधे मुंह पर ये बात बोली, और चांद काजी को फिर स्वीकार करना पड़ा कि हमारे धर्म में ये सब कमियां हैं और ठीक से विचार किया नहीं गया है हमारे धर्म में, लेकिन तो भी हमारे समाज का जो दबाव है उसके कारण हमें ये सब मानना पड़ता है, हमें मानना पड़ता है। तो श्री चैतन्य ने भी जो है फिर आगे कुछ बात उठाई नहीं, ये कहा कि तुम लोग गौ की हत्या करते हो, कितना ये जो है निंदनीय कार्य है। लेकिन फिर आगे श्री चैतन्य ने बात उठाई नहीं, तो उसने कहा कि अब हमारे धर्म का ये सब दोष है ही है, ये हमारे समाज का दबाव है। तो भगवान ने फिर आगे बात नहीं उठाई। ये भी समझना है कि श्री चैतन्य ने बात आगे नहीं उठाई, केवल ये कहा कि तुम लोग जो है अब कीर्तन को नहीं रोकना। इसका मतलब कीर्तन, कीर्तन का ज्यादा महत्व है, हम कीर्तन का अगर जो है ज्यादा फैलाते हैं तो ये अपने आप बाकी सब कार्य होते हैं। अगर हम गौ हत्या के लिए अगर हम विरोध करते हैं, गौ हत्या का विरोध करते हैं तो भी कुछ सफलता मिल सकती है, कुछ समय के लिए कुछ सफलता मिल सकती है, तात्कालिक सफलता मिलेगी और वो आंशिक सफलता मिलेगी और बाद में फिर ज्यों का त्यों वहीं चलेगा। लेकिन कीर्तन अगर फैलता है, कीर्तन फैलता है तो गो ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों की भी जो है संख्या होगी और गायों की भी संख्या बढ़ेगी। ये जो है हरि नाम ये जो है ये शक्ति है और ये अचिंत्य शक्ति है, जिसमें हम तर्क नहीं कर सकते कैसे, ये हरि नाम की शक्ति से ऐसा होता है। और अगर तर्क भी करें तो हरि नाम के द्वारा लोगों को कुछ समझने की इच्छा होगी, कुछ समझेंगे, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ेंगे, प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण किया जाए, तो प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो अगले जीवन को मानेंगे, अगले जीवन को मानेंगे तो हम इस जीवन में क्या काम कर रहे हैं, तो गौ की हत्या या दूसरे पशुओं की हत्या, तो सब प्रकार के पाप कर्म बंद होंगे, केवल एक गौ की हत्या का नहीं। इसलिए हरि नाम संकीर्तन को फैलाना और प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करना, इन दो कार्यों में अगर आप पूरी शक्ति और अपना पूरा समय लगाते हैं तो केवल गो हत्या नहीं नहीं है बल्कि व्यभिचार है और जुआ है, नशा है, कितने कितने प्रकार के दोष हैं, वो सब अपने आप दूर होंगे, क्योंकि लोग अपने अगले जीवन को समझेंगे कि अगला जीवन भी है, और आज के विज्ञान में अगले जीवन को नहीं मानते, इसलिए सब प्रकार के अनर्थ हो रहे हैं। अगले जीवन है ही नहीं, इसलिए जो कुछ भी करना है इंद्रिय तृप्ति के लिए कर लो, क्योंकि जीवन अपना जो है थोड़ा सा तो है ही है, जीवन जितनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहो करो, अगला जीवन ही नहीं है, हम ही नहीं रहेंगे। तो अगर ईश्वर हो भी, अगर ईश्वर है भी, तो ईश्वर क्या करेगा हमारा, कि हम ही नहीं रहेंगे। तो ईश्वर को मानने और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम ही नहीं रहेंगे अगले जीवन में, इस जीवन के बाद ही सब समाप्त हो जाएगा, तो ईश्वर को माने ईश्वर को ना माने क्या फर्क पड़ता है। तो वो कहते हैं आप ईश्वर को मानते हो तो वो भी ठीक है और नहीं मानते तो भी ठीक है, हाँ ये आपके मनोरंजन की बात है, आपका मनोरंजन अगर होता है ईश्वर को मानने में तो ईश्वर को मानो। धर्म निरपेक्ष का मतलब ये, धर्म आपका जो है ये मनोरंजन का एक उपाय है, तो धर्म को मानने से अगर आपका मनोरंजन होता है तो आप मनोरंजन कर सकते हो इस प्रकार का भी। और किसी का मनोरंजन दूसरे प्रकार से होता है, नशा व्यभिचार मांसाहार, तो वो इस प्रकार से भी मनोरंजन करें, मनोरंजन ही करना है और यही जीवन का लक्ष्य है। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं, अतः मानव सभ्यता के लिए इस पशु की उपयोगिता का अनुमान लगाया जा सकता है, इसीलिए भगवान कृष्ण गोरक्ष अर्थात गाय संरक्षण के पक्षधर हैं। गीता में है ना गोरक्ष, कौन सा श्लोक है, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, तीन कर्म वैश्यों के हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम गाय की रक्षा है ना, तो गाय की रक्षा वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जो सभ्य लोग वर्णाश्रम पद्धति का अनुसरण करते हैं, विशेष रूप से कृषि तथा व्यापार में लगा रहने वाला वैश्य वर्ग, उन्हें चाहिए कि गायों को संरक्षण प्रदान करें। वैश्यों का जो है कृषि गोरक्ष वाणिज्यम व्यापार और गोरक्षा और खेती, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव, तीन कर्म जो है वैश्यों के हैं, तो चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं वर्णाश्रम पद्धति में भी आगे, दुर्भाग्यवश कलयुग में लोग मंदा तथा सुमंद मतिहा अर्थात दुर्बुद्धि और जीवन के प्रति मिथ्या अवधारणा से भ्रमित होते हैं। मंदा और सुमंद मतिहा, सुमंद मति का मतलब है मति बहुत सुमंद है, शरीर तो मंद है आलसी है, मंदा का मतलब आलसी है, शरीर मंद है लेकिन मति सुमंद, सु लग गया तो और ज्यादा दिमाग और ज्यादा खराब है। कलयुग में जो है लोग आलसी तो हैं, मंद हैं, शरीर मंद है लेकिन दिमाग सुमंद और ज्यादा खराब है। शरीर तो काम करते ही नहीं है, बहुत थोड़ा काम करते हैं लेकिन दिमाग और भी ज्यादा खराब है, काम नहीं करता है। मंदा सुमंद मतिया अर्थात दुर्बुद्धि और जीवन के प्रति मिथ्या अवधारणा से भ्रमित होते हैं। जीवन के प्रति मिथ्या अवधारणा, मिथ्या अवधारणा क्या है, जीवन के बाद अगला जीवन नहीं है, इससे भ्रमित हैं लोग। और कितना बड़ा ज्ञान है, प्रभुपाद इस बात को जो है ज्यादा हाईलाइट करते हैं, ज्यादा प्रकाशित करते हैं इस बात को कि कितना बड़ा ज्ञान है, आप इस जीवन के बाद अगले जीवन नहीं मानते हैं, कितना बड़ा ज्ञान है। तो मनुष्य है का फिर कोई अर्थ नहीं है, आपको मनुष्य का शरीर मिला है लेकिन आपका जीवन मनुष्य का है ही नहीं। इस जीवन के बाद अगला जीवन अगर नहीं मानते हैं तो आप का जो है मनुष्य जीवन ही शुरू नहीं हुआ। तो आज की शिक्षा लोगों को पशु का जीवन दे रही है, मनुष्य का शरीर तो मिला है लेकिन जीवन आपको पशु का मिला, जीवन पशु का, इतनी शिक्षा इतना विज्ञान लेकिन सब कुछ क्या है, पशु की दिशा में। क्या जीवन का लक्ष्य, खाना सोना भोग करना सुरक्षा करना, बस यही जीवन का लाभ है। क्यों, अगले जीवन है ही नहीं। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव हजारों गायों का वध करते हैं, हजारों का, इस कारण से जीवन की मिथ्या अवधारणा, अगला जीवन नहीं है इसलिए गौओं की हत्या कर रहे हैं हजारों, और अगला जीवन अगर है तो हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, एक गाय की हत्या करने से उसके शरीर में जितने रोए हैं उतने हजार वर्षों तक आपको नरक में रहना है। कौन करेगा गाय की हत्या, या आज की शिक्षा लोगों को पशु बना रही है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः वे आध्यात्मिक चेतना में हतभाग्य होते हैं, दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। प्रायण अल्पायु सासभ्य कला विस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या, भाग्य बहुत मंद है, क्यों, आध्यात्मिक चेतना में मंद भाग्य है, आध्यात्मिक चेतना नहीं। अभी हरे के आंदोलन ही जो है उन मंद भाग्यों को जो है भाग्यशाली बना रहा, यही पृथ्वी का जो सौभाग्य है, ये आंदोलन हरे कृष्ण आंदोलन है जो श्री चैतन्य ने दिया है और प्रभुपाद ने फैलाया। श्री चैतन्य जो है इस आंदोलन के पिता हैं और प्रभुपाद जो है इस आंदोलन के विस्तारक हैं, विस्तार करने वाले। तो यही एकमात्र मानव समाज का सौभाग्य है, और कोई सौभाग्य, इतना विज्ञान, इतनी शिक्षा, कितना और हजारों हजारों विज्ञान की शाखाएं हैं, विभाग हैं, शिक्षा के विभाग हैं, लेकिन सब क्या है, शून्य है, सब कुछ शून्य है। आगे प्रोपर लिखते हैं, और प्रकृति में नाना प्रकार से विशेष क्या कैंसर जैसे असाध्य रोगों से तथा विभिन्न राष्ट्रों में बारंबार होने वाले युद्धों से विचलित करती रहती है। अब कैंसर की बीमारियां और कई ऐसी बीमारियां जो असाध्य हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है, ये हो रही हैं बीमारियां और युद्ध हो रहे हैं, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा है। गौ की हत्या बंद नहीं हो रही। क्यों नहीं बंद हो रही? क्योंकि जो हत्या कर रहा है उसको तो दंड नहीं मिल रहा है। एक तो तरीका यह होता है कि आपने आग में हाथ डाला तो आपका ही हाथ जला, है ना। तो जो दूसरा तरीका यह होता है, जो भौतिक प्रकृति है वो इस प्रकार के तरीके से दंड नहीं दे रही है। भौतिक प्रकृति मानव समाज के कार्यों का जो दंड देती है वो मानव समाज को दे रही है, तो उसमें वो नहीं होता है कि जिसने जो किया उसको तुरंत ही उसको वो परिणाम मिले। जो गौओं की हत्या करने वाले हैं वो फल रहे हैं, फूल रहे हैं, उनको दंड नहीं मिल रहा है, इसलिए वो समझ नहीं रहे। तो ये माया है, इस प्रकार से जो है भगवान की माया है वो कार्य करती है और वो समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। ये भगवान अगर कृपा करते हैं, भगवान अगर भक्त पर कृपा करते हैं तो तुरंत ही दंड देते हैं, जिससे तुरंत ही उसको समझ आए कि हाँ मैंने गलती की। तो भगवान की कृपा है, और माया की कृपा, माया की कृपा ऐसी है कि आप गलत काम कर रहे हैं और आपको जो है उसका अच्छा परिणाम मिल रहा है और आप सोचते हैं अच्छा है, और बाद में जाएंगे नरक में, तब भोगेंगे नरक में, तब महसूस करेंगे कि हाँ मैंने क्या गलती की थी। तो हम प्रभुपाद कहते हैं कि युद्ध हो रहे हैं लेकिन वो इसका संबंध नहीं जोड़ पाते कि गौओं की हत्या हो रही है इसलिए युद्ध हो रहे हैं और ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं जिनका निवारण नहीं हो रहा है। तो इसका इससे जो है कोई संबंध नहीं जोड़ पा रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं, जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि बहुत सूक्ष्म है विज्ञान है, उनको समझ नहीं आएगा कि जो गोमांस खा रहे हैं, जो गोमांस बेच रहे हैं, जो गायों को काट रहे हैं, जो गोमांस को पैक कर रहे हैं, तो उनको तो कुछ नहीं दंड मिल रहा है, तुरंत तो कुछ भी नहीं हो रहा है, है ना। तो इस प्रकार से ये बात लोगों को समझ में नहीं आती, प्रभुपाद जो बता रहे हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक मानव समाज कसाई घरों में गायों का लगातार वध होने देगा तब तक शांति तथा समृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता। और वे क्या सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं कि गऊओं की वध होने से ही उनको समृद्धि प्राप्त हो रही है, फिर समृद्धि का क्या रहेगी, तो गायों का अच्छा व्यापार चल रहा है, गायें काटी जा रही हैं और उनका जो मांस है वो ज्यादा है और एक्सपोर्ट हो रहा है, उसी से जो है बहुत से सामान बनते हैं, कीमती सामान बनते हैं गाय के चमड़े से, तो बहुत अच्छा उनका व्यापार चल रहा है। वो कहते हैं हमारी इकोनॉमी खत्म, हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी और गाय की हत्या नहीं करेंगे, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी उनकी गाय की हत्या से ही चल रही है, तो उनको तो उल्टा दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि मानव समाज की शांति और समृद्धि, और शांति तो वो जानते नहीं कि शांति क्या होती है। शांति का तो वो अर्थ ही नहीं जानते हैं, शांति वो समझते नहीं क्या है, शांति क्या होती है। अशांति उनकी, अशांति उनकी बढ़ती जा रही है, और उसी में ही वे जी रहे हैं, पल रहे हैं, तो वे जानते नहीं कि शांत जीवन क्या होता है, शांतिमय जीवन कैसा होता है, क्या होता है। अगर उनके भौतिक कामनाएं अगर नहीं है तो उनको शांति मिलेगी, तो वो भौतिक कामनाओं के बिना वे जो है जीवन ही, जीवन का कोई मतलब ही नहीं समझते हैं, अशांति को ही अपना जीवन वो समझते हैं। तो यहां प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ, तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में ये सब बातें बताई हैं, और ये जो साल है, ये वर्ष है, ये इस्कॉन के कॉर्पोरेशन पंजीकरण का 50वां, उसको कहते हैं स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती वर्ष, गोल्डन जुबली ईयर, है ना, कि 50वां वर्ष चल रहा है। और कल जो 13 जुलाई आएगी, तो 13 जुलाई को ही प्रभुपाद ने पंजीकरण किया था इस फॉर्म का। तो कल हमारे मंदिर में ऑडिटोरियम में 6 बजे से 9 बजे तक विशेष कार्यक्रम किया जाएगा, 50वां स्वर्ण जयंती वर्ष इस फॉर्म के पंजीकरण का। हालांकि 28 जुलाई को पड़ता है तिथि के अनुसार, 28 जुलाई को इन कॉर्पोरेशन ऑफ इस्कॉन इन न्यूयॉर्क, ये हमारे वैष्णो कैलेंडर में लिखा हुआ है तिथि के अनुसार, लेकिन तारीख के अनुसार भी हमें कई चीज़ें माननी पड़ती हैं। तो तारीख के अनुसार 13 जुलाई 1966 में प्रभुपाद ने पंजीकरण किया था। जब प्रभुपाद इस्कॉन में थे तो कोई भी फुल टाइम डिवोटी नहीं था जब प्रभुपाद ने पंजीकरण किया, और किस नाम से, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मठ संघ। एक व्यक्ति फुल टाइम डिवोटी नहीं था। कुछ लोग आते थे, हिप्पी लोग आते थे, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, प्रभुपाद के जो है प्रवचन सुनने के लिए आते थे और चले जाते थे, और प्रभुपाद के प्रति उनके मन में बड़ी आदर की भावना थी और प्रवचन सुना करते थे, लेकिन किसी ने भी समर्पण नहीं किया था, किसी ने भी दीक्षा नहीं ली थी प्रभुपाद से। और जब उनके जो वकील थे, वकील का नाम याद नहीं आ रहा है, गोल्डस्मिथ उनके वकील थे, जब उन्होंने बताया कि भाई हमें जो है 6 लोग चाहिए जो कि इसके ट्रस्टी बने और सिग्नेचर करें, तो प्रभुपाद ने कहा हाँ आप साइन कर दो। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, हमारे साइन करने से अगर स्वामी जी का काम आगे बढ़ता है तो क्या हर्ज है, तो साइन किया। लेकिन किसी ने कोई अपनी ओर से जिम्मेदारी नहीं ली थी कि आगे चलकर, या इस समय किसी कार्य के लिए वो जिम्मेदार हैं या आगे चलकर कोई जिम्मेदारी लेंगे, किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था। तो प्रभुपाद को विश्वास था। प्रभुपाद की जन्म कुंडली में लिखा था 70 वर्ष की अवस्था में ये जो है 108 मंदिर बनाएंगे, या ऐसा घर बनाएंगे जिसमें पूरी दुनिया समा सकती है, तो वो समय था। उसके पहले प्रभुपाद ने प्रयास किया तो सफल नहीं हुआ, क्योंकि जन्म कुंडली के अनुसार 70 वर्ष की अवस्था में ही सफल होंगे। तो झांसी में प्रभुपाद थे, शायद 58 वर्ष की अवस्था थी प्रभुपाद की उस समय, तो लीग ऑफ डिवोटीज उन्होंने बनाया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। प्रभुपाद समय के पहले ही कार्य करना चाहते थे, लेकिन समय से पहले कार्य कुछ हुआ, लेकिन आंशिक सफलता मिली, और फिर वो जो है छोड़ना पड़ा। ये समय था, सही समय था, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है अब इस आधार पर कि उनकी जन्म कुंडली में लिखा है, क्या वो कृष्ण के संपर्क में थे, तो कृष्ण के संपर्क में प्रभुपाद को जो है कृष्ण के संकेत प्राप्त हो रहे थे, तो प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मठ संघ का पंजीकरण किया। उस समय राधा गोविंद की स्थापना हो चुकी थी, राधा गोविंद की स्थापना हो चुकी, और राधा गोविंद नाम दिया प्रभुपाद ने, जो कि उनके जन्म स्थान में जो राधा गोविंद मंदिर था, जहाँ की घंटों दर्शन किया करते थे प्रभुपाद, उनके घर के पास ही राधा गोविंद मंदिर था, तो बचपन में प्रभुपाद राधा गोविंद का जो है दर्शन घंटों करते रहते थे। तो वही राधा गोविंद ही जो है रूप गोस्वामी के भी अर्चा विग्रह राधा गोविंद, रूपानुगवर, प्रभुपाद को रूपानुगवर कहा जाता है, रूप गोस्वामी के अनुयायियों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, तो रूप गोस्वामी के जो अर्चा विग्रह हैं। तो यहाँ आप लोगों की ओर से भी कुछ हो रहा है क्या, कल की तारीख में कोई कार्यक्रम, सवेरे क्लास में चर्चा होगी, है ना, सवेरे क्लास में चर्चा होगी, है ना। लेकिन आप लोग 28 जुलाई को कर सकते हैं, 28 जुलाई को तिथि के अनुसार है तो वो 50 साल पूरे होंगे उस दिन, और तारीख के अनुसार जो है कल की तारीख में 50 साल पूरे होंगे, है ना। तो दोनों प्रकार से इसको, इस उत्सव को मनाया जा सकता है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? हाँ जी, आप बोलिए।
हम जन्म कुंडली को प्राथमिकता देते हमें तो मना कह रहे थे
हाँ ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए ज्यादा प्रयास करें, हमें इसके लिए ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर थोड़े प्रयास से या बिना प्रयास से अगर कुछ बातें पता चलती हैं तो पता की जा सकती हैं। जैसे प्रभुपाद भृगु संहिता में भी अपना देखने के लिए गए कि वे पिछले जन्म में क्या थे और जो भी उसमें विवरण लिखा है तो प्रभुपाद गए थे। तो कभी अगर ऐसे साधन बन जाते हैं, ऐसे योग बन जाते हैं तो हम जो है पता लगा सकते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है कि भाई सबको ये करना है और सबको ये पता लगाना है और इसी में जो है पूरा समय लगाना है। तो ये हमारी चर्चा का विषय नहीं होता है कि हम इसकी चर्चा करें। इन प्रभुपाद की जो जन्म कुंडली है उनके जन्म के ठीक समय पर बनाई गई थी, उस समय जो है ऐसे मतलब ब्राह्मण थे, कुशल ब्राह्मण थे, और जिस समय जन्म हुआ वो घंटा मिनट सेकेंड का भी समय बिल्कुल सही था, तब जन्म कुंडली बिल्कुल सही बनती। तो अभी तो अगर आप जानना चाहेंगे, जन्म कुंडली अपनी बनवाना भी चाहेंगे तो भी सही सही बातें पता नहीं चलेंगी, क्योंकि वो समय नोट नहीं किया गया कि जन्म के समय आप जन्म का जो समय था, अगर तारीख पता है तो वो कौन सा समय था और उसका घंटा मिनट सेकेंड का पूरा डिटेल्स है ही नहीं आपके पास, तो कोई जरूरत नहीं है ये सब जानने की। लेकिन आपके इस जीवन में जो कुछ भी बातें निश्चित हुई हैं तो उनमें बहुत परिवर्तन हो सकता है, बहुत परिवर्तन हो सकता है। कैसे परिवर्तन होता है? जैसे अगर आपको सूली पर चढ़ना है तो आपको कांटा लग जाएगा, कांटा लग गया और इतना बड़ा आपका जो संकट है वो दूर हो गया। मच्चित्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसादा तरे शशि, मुझमें चित्त लगाओगे तो जितनी कठिनाइयां हैं मेरी कृपा से पार हो जाओगे। तो कृष्ण के चरण कमलों की नौका से आप इस संकट के समुद्र को पार करेंगे, और संकट के समुद्र को आप पार करेंगे बिना नौका के तो क्या हाल होगा, कितना अंतर है। तो आपके जीवन में बहुत सी बातें हैं जो मतलब लिखी अनिष्ट, बहुत से अनिष्ट हैं जो कि निश्चित हैं, लेकिन वो अनिष्ट आप बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे नौका के द्वारा। तो नौका के द्वारा जब आप नदी पार करते हैं तो कितना सुरक्षित होते हैं और कितने आप आनंद लेते हैं, और वही नदी को आप पार करें बिना नौका के तो क्या हाल होगा, है ना। तो आपके कर्मों के अनुसार आपके जीवन में बहुत सी बातें निश्चित हो चुकी हैं, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? अच्छा आप
सुंदर प्रवचन के लिए गुरु जी, मेरा प्रश्न इस समुद्र मंथन की लीला से रिलेटेड है, आज के प्रवचन से। तो इस समुद्र मंथन लीला में, इस समुद्र मंथन लीला में ऐरावत भी प्रकट होते हैं लक्ष्मी जी से पहले। तो गुरु जी, ये जो समुद्र मंथन जो शुरू हुआ था वो देवताओं, जो इंद्र को दुर्वासा मुनि ने शाप दिया था, तो उस समय जो इंद्र के पास हाथी था तो वो ऐरावत नहीं थे?
ऐरावत नहीं था, इंद्र के पास जो हाथी था वो ऐरावत नहीं था, क्योंकि उसके बाद ही ऐरावत उत्पन्न हुआ तो इंद्र ने लिया। तो इसमें अब देखना पड़ेगा इसमें क्या ऐरावत हाथी लिखा हुआ है, ऐरावत हाथी देखना पड़ेगा। इंद्र हाथी पर तो सवार थे लेकिन इंद्र की सवारी क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐरावत जो है इंद्र को समुद्र मंथन के बाद ही प्राप्त हुआ। समुद्र मंथन के पहले अगर किसी हाथी में बैठते थे तो ऐरावत हाथी नहीं, ठीक है। इनका प्रश्न
ये पूरी, जैसे आपने बताया कल क्या सेलिब्रेशन है, तो कल डीडी नेशनल चैनल पर 4 बजे इस्कॉन के गोल्डन जुबली ईयर के ऊपर एक बहुत सुंदर प्रोग्राम आएगा।
जोर से बोलो, सबको नहीं सुनाई पड़ा ना, ये क्या बोल रहे हैं जोर।
तो कल कल इस्कॉन के गोल्डन जुबली ईयर है, 13 जुलाई 1966 में हुआ था, तो कल जो है डीडी नेशनल चैनल पर शाम को 4 बजे इस्कॉन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री जो है कल आएगी शाम को 4 बजे डीडी नेशनल के ऊपर, इस्कॉन के बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में, प्रभुपाद जी की मूवी और इस्कॉन के बारे में बताया जाएगा, तो आप सब देख सकते हैं।
सुन लिया सबने? और रुक्मणी को सुन लिया।
कल इस्कॉन की संस्था के पंजीकरण के रजिस्ट्रेशन के 50 वर्ष पूरे होंगे, तो उस उपलक्ष्य में डीडी नेशनल चैनल पे शाम को 4 बजे इस्कॉन और श्री प्रभुपाद जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएगी। तो कृपया करके आप भी देखें और सबको बताएं इसको देखें।
इनको इनका प्रश्न पीछे खंभे पर टिके हैं जो पीछे, बोलिए।
हरे कृष्ण भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर आपने क्लास दी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि जो कोई गोमांस खाता है और इस प्रकार के निंदनीय कर्म करता है तो उसको जितने उसके शरीर में रोम है उतने समय तक नरकों में वास करना पड़ता है, तो यद्यपि गोमांस खाना अपने आप में निंदनीय कर्म है, लेकिन ये सजा कि उसके शरीर में इतने रोम है काफी मतलब बड़ी लगती है कि पता नहीं कितने करोड़ों में होंगे, कितने होंगे, तो इसे किस प्रकार से समझा जाए?
इसे किस प्रकार से समझे? नहीं, नरक में इसी प्रकार का है, इसी प्रकार से जो है सभी सजाएं इसी प्रकार की हैं। नरक में जो पापी होते हैं वो दंड जो भोगते हैं वो इसी प्रकार से उसका दंड होता है। ये उसी प्रकार से है जैसे कि आपने अगर कर्जा लिया, किसी से कर्जा लिया और आपने चुकता नहीं किया तो वो जो है ब्याज बनता है और ब्याज भी मूलधन में जुड़ जाता है, तो उसका ब्याज और बनता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, तो उसका जो है फिर इतना मतलब आपके पास कर्जा बढ़ता जाता है, इतना बढ़ जाता है कि घर मकान भी बिक जाए तो भी कर्जा पूरा नहीं होता है ना। तो किसी व्यक्ति ने एक सेर आटा लिया था किसी दुकानदार से, एक सेर आटा लिया था तो उसको तो पता नहीं था किस तरह से उनका ब्याज बढ़ता है, तो फिर जब उनकी फसल होगी तो उसमें से उन्होंने 5 किलो आटा जो है उनको दे दिया और सोचा कि हमने तो पूरा कर दिया, एक शेर की जगह 5 शेर आटा दे दिया। हाँ, लेकिन फिर बाद में वो सेठ जी कभी मिले, अरे भाई तुम्हारा तो कुछ हिसाब बनता है, आ जाना कल हिसाब देख लेना, तो हिसाब जब देखा तो उसका घर मकान पूरा बिक गया। तो इसी प्रकार से पापों के प्रायश्चित होते हैं, इसी जीवन में अगर आप पाप का प्रायश्चित नहीं करते हैं तो नरक में जो है आपको दंड हजारों करोड़ों करोड़ों गुना दंड भोगना पड़ता है। इसी प्रकार का जो है ये होता है दंड, इसी प्रकार से होता है, इसे जीवन में ही प्रायश्चित कर लेना चाहिए। लेकिन वो प्रायश्चित की विधियां भी बड़ी कठिन है और एक एक पाप का एक एक प्रायश्चित करें तो कहां तक करेंगे, इसलिए हरिनाम की विधि है, अगर आप निरअपराध नाम का जप करते हैं तो आप सब पापों से छूट जाएंगे, इसलिए अपराधों से बचने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए हम लोग 10 अपराध रोज बोलते हैं, 10 अपराधों से बच करके अगर आप नाम लेते हैं तो आप सब पापों से आप मुक्त हो जाएंगे, कोई फिर पाप नहीं रहेगा आपके जीवन में। ठीक है, हाँ जी,
धन्यवाद प्रभु जी। आपने बताया इस श्लोक में अभिषेक, लक्ष्मी जी का अभिषेक करना था, वो ब्राह्मण लोग अभिषेक करेंगे, और पीछे भी श्लोक में आया जब लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं कि देवता असुर और मानव सभी उनसे आकर्षित हो गए। प्रश्न ये उठता है कि समुद्र मंथन के समय इसमें केवल देवता और असुर ही उपस्थित थे कि मानव और ब्राह्मण भी वहां पे कैसे थे?
हाँ, एक अच्छा प्रश्न है। समुद्र मंथन के समय असुर और देवता मंथन कार्य में लगे थे, वासुकी जो है वो रस्सी है, रस्सी बनाया था वासुकी को, और पूंछ के हिस्से में देवता लोग लगे थे और मुंह के हिस्से में असुर लगे थे, तो ये कार्य मंथन का कार्य तो देवता और असुर कर रहे थे, लेकिन सब लोग देखने वाले दर्शक तो बहुत थे, तो सब दर्शक के रूप में बहुत लोग वहां पर उपस्थित थे। और लक्ष्मी जी भी जब प्रकट हुई तो भगवान ने कहा था देवताओं से कि तुम लोग किसी चीज की झगड़ा नहीं करना, क्योंकि अमृत अगर लक्ष्य है तो बाकी कोई भी चीज उत्पन्न हो तो तुम लोगों को झगड़ा नहीं करना, कोई अगर ले ले तो विरोध नहीं करना, किसने ले लिया तो ले लिया, तो ऐसे जितनी चीजें उत्पन्न हुई और चश्रवा घोड़ा बलि महाराज ले लिया, चलो ले लिया, तो आगे मंथन शुरू कर दिया। हाँ, इंद्र ने ऐरावत हाथी ले लिया तो ले लिया, तो इस तरह से कोई झगड़ा नहीं हो रहा था। लेकिन जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो सब लोग चाहते लेना। हाँ, अब झगड़ा भी ना हो, हाँ, तो फिर क्या किया जाए, तो लक्ष्मी जी को ही चुनने का अधिकार दिया जाए। इसलिए लक्ष्मी स्वयंवर हुआ। हाँ, तो अभिषेक हुआ, लक्ष्मी जी का सबने अभिषेक किया, और इसके बाद फिर लक्ष्मी स्वयंवर हुआ। स्वयंवर का मतलब स्वयंवर चुने अपने लिए, तो आप खुद ही अपने लिए पति चुन लो, तो हम लोगों में कोई झगड़ा भी ना हो, आप खुद ही अपने लिए वर चुन लीजिए। तो लक्ष्मी जी ने जो है फिर शुरू से ही विचार किया, हालांकि वो भगवान की पत्नी है और भगवान के ही समर्पित है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि वो प्रारंभिक बिंदु से विचार करती हैं कि भाई किसमें कौन से गुण हैं, और जब देखते हैं कि इसमें इतने गुण हैं, एक दोष है उसे सब गुण खत्म हो, तो सब में उन्होंने कुछ ना कुछ दोष देखा, तो जितने भी गुण हैं वो सब खत्म हो जाते हैं उस दोष के कारण। तो एक विष्णु जी में देखा कि सब प्रकार के गुण हैं, कोई दोष नहीं। हाँ, एक दोष उनमें भी है कि वो लक्ष्मी जी को नहीं चाहते, लेकिन तो भी लक्ष्मी जी चाहती हैं कि उन्होंने वरण कर लिया कि आप नहीं चाहते तो भी मैं आपको ही चाहती हूँ। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने विष्णु का वरण किया, जबकि विष्णु नहीं चाहते लक्ष्मी जी, तो भी इतने गुण हैं लक्ष्मी जी जो है किसी को नहीं चाहते हैं, केवल विष्णु को ही चाहते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधिका रमन जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव कृष्ण बलराम गौर निताई की जय।